अभी कितने नंबर का श्लोक है? 53 नंबर का, 52 हो गया, 53 नंबर का है। ये श्लोक बहुत आप विचार विमर्श करेंगे तो थोड़ा आपको एक तुलना करने की दृष्टि से विचार करो। अर्जुन श्रोता हैं, उनके चित्त में खेद है, और यहां पर वसुदेव जी वक्ता हैं, उनके चित्त में खेद है। वक्ता को अपना कष्ट छुपाना बड़ा कठिन काम, वैसे किसी भी व्यक्ति को अपने अंदर की बात छुपानी बड़ी कठिन काम है। वसुदेव जी महाराज कंस के सामने खड़े हैं और कंस की प्रत्येक हरकत से वो वाकिफ हैं, क्योंकि कंस का किसी के प्रति भी कोई श्रद्धा और प्रेम का भाव नहीं है। अर्जुन का कृष्ण के प्रति प्रेम का भाव है। वहां बड़ा सुंदर लिखा है, तम वाच ऋषिकेश प्रहसन इव भारत, गीता के दूसरे अध्याय का 10वां श्लोक। अर्जुन बहुत विषाद से युक्त है, चित्त खिन्न है, भीष्म द्रोणाचार्य की आदि की मृत्यु को लेकर के बहुत खिन्न है, लेकिन उसके सामने श्रीकृष्ण जाते हैं तो भगवान वेदव्यास शब्द का प्रयोग करते हैं, प्रहसन इव, हंसते हुए जैसे मालूम पड़ते हैं, हंसते हुए मालूम पड़ते हैं। एक आदमी विषाद से युक्त हो और उस व्यक्ति के सामने भगवान हंसते हैं तो भगवान क्या बताना चाहते हैं अर्जुन को? अर्जुन चिंता कर रहे हैं ना, ये मर जाएंगे, ये मर जाएंगे, ये मर जाएंगे। संत लोग समझाते हैं, बड़ा अच्छा दृष्टांत देते हैं। जैसे कोई कुंभकार है, रोज हजारों घड़े बनाता है और उसके बच्चे के हाथ से दो चार घड़े फूट जाएं और उसका बच्चा रोने लग जाए तो कुमार को हंसना चाहिए कि रोना चाहिए? अरे जिस कुमार की फैक्ट्री में रोज हजारों घड़े बन रहे हैं, उसकी फैक्ट्री में दो चार घड़े यदि फूट भी जाएं तो क्या फर्क पड़ता है? तो हंसने की बात हुई, यदि बच्चा टेंशन कर रहा है, रो रहा है, तो बाप के मन में क्या बात आएगी? उसने कहा, रोज आंखें खुलती हैं तो सृष्टि बन जाती है, आंखें बंद हो जाती हैं तो सृष्टि समाप्त हो जाती है। दो चार के मरने की तू चिंता क्या करता है? रोज बनते और बिगड़ते रहते हैं खेल, तो इसलिए रोने जैसी कोई बात नहीं। लेकिन यहां पर एक विलक्षण बात है, वहां श्रोता के चित्त में खेद है तो वो तो सुन सकता है, लेकिन यहां पर वक्ता कौन? वसुदेव जी महाराज, और श्रोता कौन है? कंस। आगे उसके लिए दृष्टांत देंगे, निरपत्रवम निरसंसम क्रूर और निर्लज्ज। यदि श्रोता क्रूर और निर्लज्ज हो तो उसको कन्विंस करना बहुत कठिन काम होता है, क्योंकि क्रूर जो व्यक्ति होता है वो इंद्रिय और मन में जीता है, और इंद्रिय और मन में जीने वाले व्यक्ति को समझा पाना बहुत कठिन काम होता है, बहुत कठिन काम होता है। इसलिए यहां पर बोलते हैं, देखो बड़ा सुंदर श्लोक है, प्रसन्न बदनाम्बुज भोजो निरशंसम निरपत्रवम मनसा दुय्यमानेन भीष्यासन इदम अब्रवीत। कहते हैं बहुत सुंदर बोलते हैं भागवतकार, मनसा दुयमानेना, ऐसा अर्थ लगाना है इसका, मन से अत्यंत दुखी होने पर भी देखो क्या होता है। प्रायः दिल की बात जबान पे व्यक्ति की आई जाती है, ये सामान्य व्यक्ति के लिए ये बात है, लेकिन जो धैर्यवान व्यक्ति हैं उन व्यक्ति के दिल में कितना भी दुख हो लेकिन जबान पे वो दुख नहीं आता, क्रिया में वो दुख नहीं दिखाई देता, वही तो सहनशीलता है। और सहनशीलता कुछ नहीं है, क्या कहते हैं, मनसा दुयमानेना, मन से अत्यंत दुखी होने पर भी प्रसन्न बदनाम्ब भोज, लेकिन मन से दुखी हैं लेकिन जो प्रसन्न बदन उनका जो मुख है वो खिले हुए कमल के समान है। किसका? महाराज नाटक भी ज्ञानी कर सकता है, अज्ञानी नाटक नहीं कर सकता। जिस आदमी का किसी से तादात्म्य न हो वो व्यक्ति नाटक कर सकता है, और जिसका तादात्म्य होता है उसका नाटक करना बहुत कठिन काम होता है, बहुत मुश्किल होता है। कृष्ण नाटक कर सकते हैं, अभिमन्यु की मृत्यु की बात सुनी तो अर्जुन के साथ में रोने लग गए, मारा उसी ने, लेकिन हम सोच नहीं सकते हैं। मनसा दुयमानेना प्रसन्न बदनाम बुझ भोजो, वो प्रसन्न बदन, मन में दुख है और चेहरे पर प्रसन्नता है, समझाना किसको है, निरसंसम निरपत्रपम, ये समझाना किसको, एक निर्लज्ज और निरसंस मैंने क्रूर व्यक्ति को समझाना है, क्योंकि क्रूर व्यक्ति जो होता है ना वो दूसरे को, दूसरे के दुख को देख करके प्रसन्न होता है, यही क्रूरता का लक्षण है। और क्रूरता ऐसी बढ़ती है, आपको कोई बोलेगा बकरे को ऐसा ऐसा काटो तो आप नहीं काट सकते, लेकिन कसाई काटता है उसको कोई लगता नहीं है, वो तो ऐसा चीरा दे करके आगे बढ़ जाता है, निरसंस है। और ये निरसंस होने के साथ साथ में निरपत्र माने निर्लज्ज भी है, क्या काम करने जा रहा हूं उसका उस ज्ञान के काम के ऊपर ख्याल नहीं है, इसलिए होता है हंसते भी हसन, जैसे श्री कृष्ण अर्जुन के सामने हंसते हैं उसी प्रकार यहां बताया विहसन, विहसन शब्द अर्थ यहां पे किया है टीकाकारों ने, बहुत खुल करके हंसते हैं, किसके सामने, कंस के सामने, इदम अब्रवीत, कंस के सामने उन्होंने ये बात कही, क्या बात कहते हैं जरा देख लो, वसुदेव जी महाराज अब बोल रहे हैं, एक श्लोक यहां पे उनका है, आगे फिर सुखदेव जी बोलते हैं, नहीं अस्यास्ते भयं सौम्य यदवाघ अशरीरिणी पुत्रान समर्पयिषे अस्या यतस्ते भयं समुपस्थितम्, है ना, भयं उत्थितम् लिखा है, नहीं अस्यास्ते भयं सौम्य, कंस के अंदर कहां सौम्यता है, लेकिन एक शास्त्रों का नियम है, जिस व्यक्ति से काम निकालना हो उस आदमी की प्रशंसा करनी पड़ती है, आदमी का हर चीज से पेट भर जाता है लेकिन प्रशंसा से कभी पेट नहीं भरता, कितना भी बड़ा आदमी हो प्रशंसा के लिए पेट जरा खाली रहता है थोड़ा बहुत एक कोना, तो उन्होंने उसकी प्रशंसा किया, नहीं अस्ति आस्ते भयम सौम्य, हे सौम्य तुम्हें जो अशरीरी जो आकाशवाणी हुई, शरीर वाक बोलते हैं शरीर से निकलने वाली वाणी, और अशरीर वाक मैंने आकाशवाणी, जो आकाशवाणी हुई उस आकाशवाणी के द्वारा ये सिद्ध होता है कि देवकी से आपको भय नहीं है। भय आपको किससे है? इसके पुत्र से। यहां उन्होंने आठ नहीं बोला, इनके पुत्रों से तुम्हें भय है। तो क्या करूंगा मैं? पुत्रान समर्पई से अस्या, इसलिए जैसे ही इसके पुत्र होंगे उन पुत्रों को मैं तुम्हें सौंप दूंगा। कंस शांत हो गया। अब सुखदेव जी महाराज क्या कहते हैं देख लो। स्वसुबदात निविवर्ते कंस तथा वाक्यम सारवेत वसुदेव अपि प्रीत प्रशंस्य प्राविशद गृहम। बता रहे बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं। स्वसुबदात, सोसु बहने छोटी बहन देव की, उसके वध से कंस निवृत्त हो गया। क्यों? क्योंकि वसुदेव जी महाराज की सत्य में इतनी प्रतिष्ठा थी कि कंस जैसे क्रूर व्यक्ति को भी उनकी बात पर विश्वास हो गया। जैसे हमने कभी आपको बताया, योग दर्शन में लिखा है, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग। जब योगी की अहिंसा में प्रतिष्ठा हो जाती है तो उस व्यक्ति के सामने बड़े से बड़े हिंसक प्राणी भी अपनी हिंसा की वृत्ति का त्याग कर देते हैं, हिंसा की वृत्ति का त्याग कर देते हैं। ऐसा कहते हैं कि जहां पर बुद्ध ठहरते थे कभी, बड़े दूर दूर से शंकर, क्योंकि उस समय बड़े बड़े जितने पंडित थे, दिग्नाग है, धर्मकीर्ति है, जो उस समय के महान पंडित थे, वो सारे के सारे पंडित बौद्ध बन गए, बुद्ध बन गए। क्योंकि बुद्ध के पास में जब वो पहुंचते थे तो उनके मन की जितनी शंकाएं हैं वो शंकाएं अपने आप निवृत्त हो जाती थी। क्योंकि बुद्ध का जीवन संशय रहित था, और संशय रहित जिस व्यक्ति का जीवन होता है उस व्यक्ति की सन्निधि में जब आप पहुंच जाते हैं तो आपका चित्त भी संशय से निवृत्त हो जाता है। अहिंसा में जिस व्यक्ति की प्रतिष्ठा होती है उस व्यक्ति की सन्निधि में जब आप पहुंचते हैं तो आपके हृदय से हिंसा की वृत्ति समाप्त हो जाती है। योग दर्शन बहुत बारी सुना होगा तो आपने। इस सुखदेव जी महाराज का श्लोक है, स्वसुबदात निब्रते है कंस तथा वाक्यम सारवित। कंस को लगा कि ये आदमी जो बात बोल रहा है वो आदमी दिल से बात बोल रहा है, और इस आदमी के मन वाणी और क्रिया में एकता है। नहीं तो कंस जैसे व्यक्ति को संतुष्ट करना इतनी आसान बात नहीं है, और उसको मृत्यु दिख रही है साक्षात। इसलिए बताते हैं निवृते कंस वाक्य सारवित, क्योंकि उनके वाक्यों में उनको सार दिखा। किसको? कंस को। सत्यवादी है ये, और सत्यवादी केवल होने की बात नहीं है, एक साधना उसकी है सत्य के प्रति, इतना तप है कि कंस जैसे व्यक्ति की वृत्ति बदल गई। और जो देवकी की हत्या के लिए वो प्रवृत्त हुआ था वहां से वो क्या हो जाता है? तो ये जो कंस की निवृत्ति है, भागवत में समझने की बात ये है, कंस की जो निवृत्ति है इस निवृत्ति का हेतु बताया क्या? वसुदेव जी महाराज की सत्य में प्रतिष्ठा, मन और वाणी और क्रिया की एकता। जब मन वाणी और क्रिया की एकता होती है तो आपसे सामने वाला व्यक्ति छल करते हुए भी डरता है, देखो ना, आपको छोटी सी बात बता दूं, वैसे तो आप ज्ञानी लोग बैठे हो सब, है कि जब महाभारत बिल्कुल अंतिम चरम सीमा पर पहुंच रहा था, कौरवों की हार प्रायः निश्चित थी, उस समय दुर्योधन गंधारी के पास में जाता है कि अब कैसे जीता जाए, कैसे बचा जाए। उस समय उन्होंने कहा, तुम्हारे को बचने का उपाय केवल युधिष्ठिर बता सकता है। और कंस युधिष्ठिर के पास में जाता है। हाँ, दुर्योधन जो है ये दिमाग में कंस ही बैठा हुआ है। अभी दुर्योधन जो है वो युधिष्ठिर के पास में जाता है, और युधिष्ठिर के पास में जब जाता है और युधिष्ठिर उसको उपाय, मैंने आप देख लो इतना बड़ा दुश्मन है वो, लेकिन उस व्यक्ति का युधिष्ठिर के प्रति विश्वास, ये दुर्योधन की विशेषता नहीं, ये युधिष्ठिर की विशेषता है। सत्य में इतना प्रतिष्ठित वो व्यक्ति है कि दुश्मन को भी ये लगने लग गया कि ये व्यक्ति कभी गलत उपाय नहीं बता सकता। आपका चरित्र ऐसा होना चाहिए, आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि दुश्मन को भी लगे कि कभी इस व्यक्ति से पूछेंगे तो ये व्यक्ति कभी गलत सलाह नहीं देगा। और युधिष्ठिर ने उनको सही सलाह दी, ये तो आपको पता है सब। सलाह को बिगाड़ने वाले कौन है वो भी आप जानते हो। हाँ, तो कहते हैं देख लो, वो निवृत्त हो गया वहां से। अब बता रहे हैं, अभी सुखदेव जी महाराज के श्लोक चल रहे हैं थोड़ा सा। अथ काल उपावृते देवकी सर्वदेवता पुत्रान प्रसुसवे चाष्टौ कन्याम चैव अनुवत्सरम। इस प्रकार से अथ काल उपावृते, धीरे धीरे जिस प्रकार से काल बीतता गया तो देवकी कैसी हो गई, सर्वदेवता मई। देवकी कोई ऐसा कोई सामान्य स्त्री नहीं है, ये भी आप समझ लीजिएगा बात। लिख दिया भागवतकार ने, लिख दिया सर्वदेवतामयी, सभी देवताओं का वास उसके अंदर है। किसके अंदर? देवकी के अंदर सब देवताओं का वास है। देखो हमारे अंदर भी सब देवताओं का वास है, ऐसा नहीं समझना खाली देवकी के अंदर है। लेकिन देवताओं का वास होने के बावजूद भी देवकी ने उनको प्रकट कर लिया है। गुण केवल बुद्ध में है ऐसी बात नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, ममे बांसो जीव लोके जीव भूता सनातन। प्रत्येक व्यक्ति परमात्मा का अंश है और प्रत्येक व्यक्ति में परमात्मा है, लेकिन हमारे अंदर का परमात्मा इतना सोया हुआ है, इतना सोया हुआ है, और ज्यादा सोया है कि नहीं सोया है तो मैं नहीं जानता, लेकिन हमने कभी उसको जगाने की कोशिश नहीं करी। और देवकी ने अपने अंदर सोए हुए परमात्मा को जगाने की कोशिश करी, और जब जगाने की कोशिश कर, जब देवता आपके अंदर जग जाते हैं तो आपके जीवन में असुरों का जो राज्य है वो अपने आप ही समाप्त हो जाता है। जग गए सब देवता। तो कहते हैं उन्होंने आठ पुत्र, अत काल उपावृते देवकी सर्वदेवता पुत्रान प्रसवे, पुत्रों को पैदा किया और एक पुत्री को पैदा किया। अच्छा, प्रथम पुत्र कौन हुआ? कीर्तिमंतम प्रथमजम कंसाय आनक दुंदुवी अर्पयामास कृक्षेण सो अनिरतात अति विह्वल। देख लीजिए यहां पर लिखा है, जो बहुत धार्मिक व्यक्ति होता है, सत्य में प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है, उसको कभी झूठ बोलना पड़े तो अंदर से बहुत व्यथित हो जाता है। झूठ बोलना पड़े तो अत्यंत व्यथित हो जाता है। तो ये झूठ न बोलना पड़े, कीर्तिमंत पैदा हो गया, उसको वहां पहुंचाना पड़े, न पहुंचाऊं मैं, इस बात को लेकर के वो अत्यंत विह्वल हो जाता है और फिर क्या करता है, अर्पया मास कंसम, और कंस को उसको अर्पित कर देता है। अब देख लीजिए 58 नंबर के श्लोक में, 57 ये हो गए, इस 58 नंबर के श्लोक में ये अर्पया मास के बाद तुरंत ये श्लोक आया, चार आदमियों के लक्षण बताए इस श्लोक के अंदर। एक साधु कौन है, एक बात बताया, विद्वान कौन है, और नीच व्यक्ति कौन है, और जितेंद्रिय कौन है, ये चार लक्षण इसमें 58 नंबर के सूत्र में भागवत में। जैसे ही ये उत्पन्न हुआ, उत्पन्न होने के बाद ये वसुदेव जी महाराज के अंदर साधुता है, विद्वत्ता है, और जितेंद्रियता है, और कंस के अंदर नीचता है। इस चार चीजों का वर्णन इस श्लोक के अंदर कर रहे हैं, फिर आगे की कथा बाद में बताते हैं। किम दुस्सहम नु साधूनाम विदुषाम किम अपेक्षितम किम अकार्यम कदर्याणाम दुस्त्यज्यम किम धृतात्मनाम। बता रहे हैं, देख लीजिए, साधु कौन है, जिस व्यक्ति के लिए कुछ भी चीज असह्य न हो, जो मान को भी पचा सके और जो अपमान को भी पचा सके, जो ठंडी को भी पचा सके, गर्मी को भी पचा सके, भूख और प्यास, लेकिन सबसे कठिन चीज है मान और अपमान को पचाना। किम दुस्सहम नु साधु नाम, साधु का अर्थ होता है जो एकदम सरल है, और जीवन में सरलता आती है सहन करने से, सब सहन कर लेता है। मैंने कभी आपको बताया कि जब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के पुण्य के कारण जहां परीक्षित परायोप वेश में बैठे हुए हैं वहां पर पहुंचते हैं, तो पहुंचते समय कोई उनके ऊपर पत्थर फेंक रहा था, पत्थर फेंक रहा था, ऐसा लिखा है भागवत जी के अंदर, आप लोगों ने भी सुना होगा, पत्थर फेंकता है, कोई गाली देता है, कोई कीचड़ फेंकता है, लेकिन सहज भाव से वो चलते हैं। जब वो परीक्षित की सभा में पहुंचते हैं तो बड़े बड़े ऋषि वहां बैठे हुए हैं, और वो सारे के सारे ऋषि सुखदेव जी महाराज को देख करके खड़े हो जाते हैं, लेकिन सुखदेव जी का हाथ ऐसा ऊपर नहीं उठा आशीर्वाद देने के लिए, वो शांत होकर के बैठ जाते हैं। इसका कारण क्या है? अपमान करने वाले के प्रति द्वेष नहीं और सम्मान देने वाले के प्रति राग नहीं, इसका एक महत्वपूर्ण कारण यह है, एक तो सुखदेव के अंदर साधुता है, सहनशीलता, दूसरी बात सहनशीलता के साथ में समझ भी होनी चाहिए। शास्त्रों में लिखा है क्या, मूर्खम च परिभ्राजकम, सन्यासी मूर्ख हो तो उसका साथ छोड़ देना चाहिए। वैद्यम पान रतम, नीति का श्लोक बता रहा हूं, यदि डॉक्टर दारू पीता हो और वैद्य भांग खाता हो तो उसको नशे में हो उस समय कभी अपने को दिखाना नहीं, बाई टांग की तरह जगह दाहिनी टांग काट देगा वो। वैद्यम पान रतम नटम कुपटितम स्वाध्यायहीनम द्विजम, और जो व्यक्ति स्वाध्याय न करता हो, स्वाध्याय का अर्थ है वेद, स्वाध्यायो अधितव्य, वेद के अंदर कर्म का प्रतिपादन है, उपासना का प्रतिपादन है और ज्ञान का प्रतिपादन है, इन तीनों चीजों का प्रतिपादन। जिसको कर्म उपासना और ज्ञान का बोध नहीं है उस व्यक्ति के साथ में ज्यादा व्यवहार नहीं करना चाहिए। संत 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 बोलते हैं ना, संत संत किसको बोलते हैं? उपनिषद में संत की व्याख्या की है बड़ी अच्छी, अस्ति ब्रह्मेति चेत वेद संतम एनम ततो विदुरिति। संत उसको बोलते हैं जो ये समझता है जो क्रिया मैं कर रहा हूं उस क्रिया को कोई न कोई देख रहा है। आप देखते हैं आजकल सोसाइटियों में सीसीटीवी कैमरे लग गए और लिखा रहता है यहां सीसीटीवी, तो आदमी अपने आप ही सावधान हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता? तो संत का अर्थ यह होता है कि मैं जो भी कर रहा हूं उसको कोई ना कोई, अस्ति ब्रह्मेति चेत वेद, वो दृष्टा के अस्तित्व को प्रतिपल और हर जगह जो स्वीकार करे उसका नाम संत है। और जब आप प्रतिपल ये देखते हो कि मेरी क्रिया को कोई देख रहा है, मेरे कर्म को कोई देख रहा है, तो आप मुझे लगता है कि ऐसे पूजा पाठ करें कि न करें, कैमरे के सामने जरूर पूजा पाठ करते हैं। ऐसे जिंदगी में कभी माला पकड़े कि नहीं पकड़े? जो फोटो खिंचाते समय जरूर माला पकड़ लेते हैं, क्योंकि ये निश्चय कर लेना चाहिए कि जो हम करते हैं उसको कोई देख रहा है। तो ये बता रहे हैं, साधु का अर्थ बता दिया यहां, किम दुस्सहम नु साधु नाम। साधु का अर्थ होता है जो कुसैन करता है, क्योंकि सुखदेव जी महाराज के मन में आया, उन्होंने उसी दृष्टि से पत्थर मारने वाले को देखा और उसी दृष्टि से वहां पर बैठे बड़े महापुरुषों को देखा। उन्होंने कहा प्रत्येक व्यक्ति अपने ज्ञान को महत्व देता है। आपकी बुद्धि में यदि ये ज्ञान है कि ये महात्मा है, विद्वान है, ऐसा यदि ज्ञान है आपकी बुद्धि में है, तो आप जो है आदर देते हो, सम्मान देते हो। एक व्यक्ति के मन में ये है कि हट्टा कट्टा है, उम्र कम है, और फिर इस व्यक्ति को भीख क्यों देनी है? वो बोलता है हराम का खाते हो क्या? तो बुद्धि अपने ज्ञान को महत्व देती है, तो उनकी बुद्धि इस प्रकार की है और इनकी बुद्धि इस प्रकार की है। तो व्यक्ति की बुद्धि जो पत्थर मार रहे हैं उनकी बुद्धि में सुखदेव का महत्व अलग है, और जो उनको देख करके खड़े हो जाते हैं उनकी बुद्धि में उनका महत्व अलग है। अपनी बुद्धि को महत्व देते हैं, इसलिए साधु का लक्षण कर दिया। किम दुस्सहम नु साधु नाम। अच्छा, ये तो साधु ये हो गया, ये आप समझ लेना आप साधु हो कि नहीं। और विदुषाम किम अपेक्षितम, विद्वान कौन है? विद्वान वो व्यक्ति है जिसको किसी से कोई अपेक्षा नहीं है। विदुषाम किम अपेक्षितम, वैदुष्य आपके जीवन में तब आता है, विद्या के रहस्य को आप तब समझते हो जब आपके जीवन में किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखते। कृष्ण भी गीता में भक्त का लक्षण बताते हैं, अनपेक्षा सुचिर दक्षो उदासीनो गतव्यथा। ये जो लक्षण बताया ये भागवतकार ये लक्षण बता रहे हैं, विदुषाम किम अपेक्षितम। जब विद्वान जो व्यक्ति होता है, विद्वान होना बड़ा कठिन काम है, विद्वान हो गया तो उसको किसी से कोई अपेक्षा नहीं रहती, उसी को बोलते हैं क्या? विद्वान। तो कितने लोगों के लक्षण हो गए? साधु के, विद्वान के। किम अकार्यम कदर्याणाम, कदर्य बोलते हैं नीच व्यक्ति के लिए, नीच व्यक्ति के लिए कोई भी कार्य अकार्य नहीं है। वो अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए, दुर्योधन है वो कहता है, किससे कह रहा है? मदार्थे त्यक्त जीविता, मेरे लिए भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, जयद्रथ, ये सब मेरे लिए प्राण त्यागने के लिए तैयार हैं। मद अर्थे त्यक्त जीविता, अर्थात मैं कुछ प्राप्त करने के लिए भीष्म के भी प्राण ले सकता हूं और द्रोणाचार्य के भी प्राण ले सकता हूं और कर्ण के भी प्राण ले सकता हूं। कर्ण दोस्त है, नीच व्यक्ति दोस्त के साथ भी गद्दारी कर सकता है। अर्जुन की दृष्टि देखो, अर्जुन कहता है हे कृष्ण, तुम भीष्म के ऊपर बाण चलाने के लिए बोलते हो, इस आदमी की उंगली पकड़ के मैं चलना सीखा। और आप ध्यान यदि आपको होगा, एक महान भागवत के अंदर महान चरित्र द्रौपदी जी का प्रकट होता है। द्रौपदी ने एक बात कही भागवत के प्रथम स्कंद में, उसने बात सच्ची बात उसने कही, उसने अर्जुन से कहा हे अर्जुन, कोई पुरुष स्त्री से कितना भी प्रेम करता हो लेकिन वो कभी स्त्री के हृदय के दर्द को नहीं समझ सकता। और ये बात द्रौपदी किस समय कह रही है मालूम है आपको? जिस समय अश्वत्थामा को अर्जुन पकड़ के ले आता है और अश्वत्थामा को मारने के लिए भीम भी कहता है और अर्जुन भी प्रवृत्त होता है, उस समय जब द्रौपदी से पूछा गया, द्रौपदी ने कहा कभी कोई पुरुष स्त्री के हृदय को नहीं समझ सकता और आदमी क्रोध में किए गए उपकार को भूल जाता है, तो क्रोध में किए गए उपकार को यदि व्यक्ति भूल जाए वो व्यक्ति व्यक्ति नहीं है। क्या उपकार? उसने कहा ये अश्वत्थामा को गौर से देखो और यदि गौर से देखोगे तुम तो तुम में इसको द्रोणाचार्य नजर आएगा। सैव प्रजा रूपेण भागवत कहती है, वही प्रजा रूप से द्रोणाचार्य ही अश्वत्थामा के रूप में खड़े हैं। विचार करो, इस व्यक्ति ने तुम्हारे को जिताने के लिए एकलव्य के साथ में कितना बड़ा पक्षपात किया था मालूम है आपको? विपत्ति और प्रतिकूलता के समय में जब आप किसी के उपकार का स्मरण करते हैं उस समय बहुत सारे नीच कर्मों से आप बच जाते हैं। एक मां जब कुछ बोलती है, गिरती है और बच्चा उसको बोलता है क्या हो गया ये, लेकिन उसे कभी याद इस बात की आए मैं छोटा था तो कितनी बार गिरा और कितनी बार इसने मुझे उठाया, यदि इन चीजों की याद आए तो शायद मां को उठाते समय वो अपने को भाग्यवान समझे, उपकार करने वाला नहीं समझेगा, भाग्यवान समझेगा। अर्जुन वो कहता है कि इस आदमी की उंगली पकड़ के मैं चलना सीखा और दुर्योधन कहता है मदर्थे त्यक्त जीविता। इसलिए भागवतकार देखो ये श्लोक बीच में लाए कौन? सुखदेव जी महाराज। ये कुछ जरूरी चीजें हैं जो हमें समझनी चाहिए, हम सुनकर के अपना कार्य पूरा कर देते हैं। शास्त्रों में लिखा है न विरतो चेत दुश्चरिता, कितने भी आपने शास्त्र सुन लिए, आपको बोल दिए कोई कि आपके सिर में दर्द हो रहा है और आप जो है एक कोई गोली, पहले कौन सी गोली आती थी, डिस्प्रेन की गोली आती थी, आप एक गोली खा लो तो दर्द हो जाएगा, ये आपने सुन लिया, ये सुनने मात्र से कोई आपका दर्द दूर होगा क्या? दर्द की निवृत्ति कब होगी? जब आप गोली खाओगे तब दर्द की निवृत्ति होगी, बिना गोली खाए दर्द की निवृत्ति? कठोपनिषद में यम कहते हैं न विरतो चेत दुश्चरितात्। हे नचिकेता, सत्य का श्रवण करे, धर्म का श्रवण करे और चरित्र में यदि परिवर्तन नहीं आया तो सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। तो ये बता रहे हैं किम अकार्यम कगर्याणाम, जो नीच व्यक्ति होता है उससे कोई कार्य ऐसा नहीं जो नहीं कर सकता है। इंद्रियों का बसीभूत जो व्यक्ति है वो कुछ भी कर सकता है। अच्छा, और आगे बताया दुष्ट, तीन के लक्षण हो गए ना, और चौथा है, चौथा कौन है, जितेंद्रिय। दुस्त्यज्यम किम धृतात्मनाम, जिसने मन और इंद्रियों के ऊपर बस किसका है, तो कहते हैं जिस व्यक्ति के मन और इंद्रियों के ऊपर बस होगा, नियंत्रण होगा, वो किसी भी चीज को त्याग सकता है, कोई चीज उसके लिए अत्याज्य नहीं है। पद हो, प्रतिष्ठा हो, ऐश्वर्य हो, वो हर चीज, जितेंद्रिय व्यक्ति प्रत्येक चीज को त्यागने में समर्थ होता है। क्योंकि ये तो बहुत अच्छी बात कह दी, आत्म नाम करके इंद्रियां और मन सब ले लेना, ये मन और इंद्रियां बस में न होने के कारण ही हम कुछ भी त्यागने में समर्थ नहीं होते। क्योंकि जितना भी संघर्ष है वो किसके लिए है, जितना भी संघर्ष और संग्रह है वो संघर्ष और संग्रह सब जो है मन और इंद्रियों के लिए ही संघर्ष और क्या है, संग्रह है। जब आदमी अपने मन और इंद्रियों को जीत लेता है तो इसलिए ये देख लिए, जितेंद्रिय कुछ भी त्याग सकता है, नीच व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, विद्वान जब व्यक्ति हो जाता है, विद्वान विद्या जिसके आचरण में आ जाती है, वो व्यक्ति कभी किसी से कोई अपेक्षा नहीं कर सकता। इसलिए सुखदेव जी महाराज को कहते हैं वो विद्वान थे, उनकी किसी से कोई अपेक्षा नहीं है, बड़े विद्वान जो होते हैं। और साधु का अर्थ हो गया जो सब कुछ सहन कर लेते हैं। अब ये बीच में श्लोक कहां, देखिए बीच में श्लोक ले आए, कोई प्रसंग नहीं है लेकिन फिर भी बीच में ले आए, तो उनको वसुदेव के अंदर साधुता दिखी और विद्वत्ता दिखी और तीसरा जी आत्म जितेंद्रियता देखी और कंस के अंदर उनको नीचता देखी। ये तीन चार चीजें हो गई श्लोक के अंदर, बड़ा सुंदर वर्णन कर दिया। तब अब सुखदेव जी महाराज जी बोल रहे हैं अभी, क्योंकि जब आप बातों को सुने, सुखदेव जी कौन सी चीजें बोल रहे हैं, वसुदेव जी कौन सी चीजें बोले, तब उन श्लोकों के माध्यम से व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता लगता है। सुखदेव का व्यक्तित्व कैसा है, कृष्ण के साथ में जुड़ा हुआ व्यक्तित्व यदि किसी का है तो सुखदेव का व्यक्तित्व कृष्ण के साथ में जुड़ा हुआ है। इसलिए व्यास के कातर स्वर सुखदेव को अपनी तरफ नहीं बुला पाते, लेकिन भागवत के वही श्लोक सुखदेव को अपने पीछे पीछे खींच लेते हैं, क्योंकि उसमें उन्होंने कृष्ण के स्वरूप को देखा। अब सुखदेव जी महाराज के बीच में श्लोक बोलने के बाद आगे श्लोक बोल रहे हैं, देखो, दृष्ट्वा समत्वं तत्सौरे सत्यं चैव व्यवस्थितं कंस तुष्टमनः राजन् प्रहसन इदम अब्रवीत। अब देख लीजिए, पहले बताया कि हंसते हुए उन्होंने बोला, किसने, वसुदेव जी महाराज ने, और अब यहां पर लिखा है एकदम गीता का जो दसवां श्लोक है उसका अनुवाद है, जिस प्रकार कृष्ण हंसते हुए बोले उसी प्रकार से कंस भी प्रहसन इदम अब्रवीत, हंसते हुए यह बोला, क्या बोला, दृष्ट्वा समत्वं तत्सौरे, जब वो कीर्तिमंत को लेके गए उसके पास कंस के पास में, तो उन्होंने देखा इनकी मन और वाणी और क्रिया में एकता है, और कंस जैसा व्यक्ति अपने चित्त में अपनी बुद्धि में ये निश्चय कर लेता है कि वसुदेव की जो स्थिति है वो समत्व में वसुदेव की स्थिति है। आप देख लो, आप एक नीच क्रूर व्यक्ति और उस व्यक्ति की आपके प्रति भावना क्या है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी सोच होती है। एक बारी की बात है, यहां पे कोई कार्यक्रम था, बड़ा कार्यक्रम, पहले प्रेमपुरी में बहुत लोग आया करते थे, तो कल्याण जी का कोई प्रोग्राम था यहां पे, तो हरि भाई थे, तो कुछ कार्यक्रम था, वो हमारे हाथ से उसको रखा हुआ था, तो हरि भाई ने उनकी बड़ी प्रशंसा की, कल्याण जी भाई की, कि ये ऐसे हैं, इनके सामने तो बड़े बड़े हीरो नाचते हैं, वो मेरे को याद है उनकी बात, कलाकार थे बड़े। तो कल्याण जी भाई ने बोला, बीच में एक एक बात पहले मेरी सुन लो आप, मैंने बोले आपकी प्रशंसा सही तभी है यदि मेरी पत्नी मेरी प्रशंसा कर दे तो। यदि वो प्रशंसा कर दे तो तुम्हारी सब बात सही, और यदि वो प्रशंसा नहीं करती है तो तुम्हारी सब बात झूठ, क्योंकि शास्त्रों में रामायण में एक श्लोक आता है, पथिका नैव जानन्ती जानन्ती सहचारिणा अनेन दुष्ट चित्तेन सकुलम निष्कुलीकृतम। आने जाने वाले नहीं पहचानते कि किसका व्यवहार कैसा है, व्यक्ति के राज, व्यक्ति का स्वभाव, व्यक्ति का प्रभाव वो जानता है जो व्यक्ति के साथ में हमेशा रहता है। पथिका नैव जानन्ती जानन्ती सहचारिणा, जो साथ में रहते हैं वो जानते हैं, और साथ में रहने वाला व्यक्ति यदि ऐसा समझ ले, इसका अर्थ ये है कि आपकी स्वभाव में धर्म आ गया। तो वसुदेव जी महाराज के स्वभाव में धर्म है, और कंस जो पाप क्रिया में निवृत्त होता है वो वसुदेव के स्वभाव के प्रभाव में आकर के पाप कर्म से निवृत्त हो जाता है। जब आप किसी के स्वभाव के प्रभाव में आ जाते हैं तो तत्काल के लिए आप उस क्रिया से निवृत्त हो जाते हैं, लेकिन सदा के लिए निवृत्त तो तभी होंगे जब आपके स्वभाव में वो बात आ जाए। इसलिए बता रहे हैं, दृष्ट्वा समत्वं तत्सौरे सत्ये चैव व्यवस्थितम्। कंस ने ये निश्चय कर लिया कि ये जो व्यक्ति है ये सत्य में प्रतिष्ठित है, व्यवस्थितम्, सत्य में व्यवस्थित ये व्यक्ति है। कंस तुष्ट मनः राजन, सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित को, संबोधन कर रहे हैं, हे राजन, अपने आचरण से कंस जैसे व्यक्ति को वसुदेव जी महाराज ने संतुष्ट कर लिया। और क्या कहा, प्रहसन इदम अब्रवीत, और वसुदेव जी के सामने खिलखिला करके हंसते हुए कंस ने ये कहा, क्या कहता है कंस सुन लीजिए आप, प्रतियातो कुमारोयम् न अस्मादस्ति मे भयम् अष्टमात् युवयो गर्भात् मृत्युर्मे विहिता किल। वो कह देता है, प्रतियातो कुमारोयम्, ये बीच में इतनी बात सुखदेव जी को कहनी पड़ी, नहीं तो उसके बाद 57 के बाद सीधा ये 60 नंबर का श्लोक आना चाहिए था कि ले गया और ले जाने के बाद उसने कहा वापस करो, लेकिन दोनों के स्वभाव का उन्होंने बीच में वर्णन कर दिया। तो केवल कथा सुनाना उनका तात्पर्य नहीं है, ग्रंथ के अंदर जो गांठें होती हैं उन गांठों को समझना है। आप केवल ग्रंथ समझते हैं, ग्रंथे ग्रंथी, ग्रंथ के अंदर जो गांठ होती है जो वास्तविक में खोलने लायक होती है, जिसके लिए बुद्धि परिश्रम करती है, वो गांठें जो हैं वो कोई महापुरुष ही खोलते हैं, बाद बाकी तो फिर केवल श्रवण मात्र ही श्रवण मात्र होता है, क्योंकि हम लोगों को हर चीज में मनोरंजन चाहिए, क्योंकि मन के अधीन हम इतने होते हैं। कथा भी हमको मन प्रसन्न करने वाली चाहिए, इंद्रियों को प्रसन्न करने वाली चाहिए। मन को मारने वाली और इंद्रियों को संयमित करने वाली कथा हमको नहीं चाहिए। ऐसा है जीवन के अंदर, इसलिए कभी जीवन में उद्धार नहीं होता। आदमी जहां 50 साल पहले पड़ा रहता है, 50 साल के बाद भी आदमी की वही स्थिति होती है। श्रवण करने के बाद भी जितने भी श्रवण कुमार होते हैं ना, वो किसी न किसी दशरथ के बाण से ही मारे जाते हैं, हैं? उनके अपने जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं आता। इसलिए बोलते हैं प्रदेयातो कुमारोयम, इसको आप वापस लेके जाइए। कंस बोलता है नहीं अस्मादस्ति में भयम्, इससे मुझे कोई डर नहीं है। इतने उसमें लिखा है ना, किम अकार्यम कदर्याणाम, नीच आदमी सब कुछ कर सकता है, लेकिन एक सतपुरुष जो सत्य में प्रतिष्ठित व्यक्ति है, उस व्यक्ति का साथ करने मात्र से वो एक बहुत बड़ी निकृष्ट क्रिया से निवृत्त हो जाता है। बोले क्यों? अष्टमात युवयो गर्भात मृत्युर में विहिता किला, क्योंकि आपका जो अष्टम गर्भ है, उस अष्टम गर्भ के द्वारा मेरी मृत्यु का विधान किया गया, इसके द्वारा मेरी मृत्यु होने वाली नहीं है। अच्छा, अभी देखिए क्या कहते हैं। तथा इति सुदम आदाय यया आनक दुंदुवी नाभ्यनंद्यत तद वाक्यम असत अभिजिता आत्मना। ये श्लोक भी बड़ा मजेदार हो गया। अभिजित आत्मना, जिस व्यक्ति का मन और इंद्रियों के ऊपर बस नहीं है, वो व्यक्ति कभी भी अपनी बात से पलट सकता है। मन और इंद्रिय जिस व्यक्ति की बस में होंगी, वो अपनी बात पे अटल रहता है। रघुवंश के लिए क्या आता है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर प्राणों से भी श्रेष्ठ जो है वचन होता है। वचन के महत्व को समझते हैं, इसलिए शास्त्रों में लिखा है वाणी एक अनमोल है, जो कोई बोले जान, वाणी बड़ी अनमोल चीज है। यदि कोई बोलना जानता है तो कैसे बोलना चाहिए। ये तराजू तोलिए, पहले हृदय के तराजू में उसे तोल लेना चाहिए, फिर करे बखान। हृदय के तराजू में तोले बगैर यदि बखान कर देते हैं तो अपनी बात से पलटने में देरी नहीं लगती। फिर आदमी को अनमोल चीज है, लेकिन इसलिए यहां लिख दें कि वो आनक दुंदुवी, मैंने वसुदेव जी महाराज के लिए बोलते हैं नाभ्य नंदत, वो कंस के कहने पर। देखिए जिस प्रकार से कंस वसुदेव के चरित्र और वसुदेव के स्वभाव को जानता है, उसी प्रकार वसुदेव कंस के चरित्र और स्वभाव को सम्यक प्रकार से जानते हैं। जिस आदमी की इंद्रिय और मन बस में नहीं है, वो व्यक्ति अभी क्या बोलता है और एक मिनट के बाद क्या बोलता है। तद वाक्यम असतो अभिजित आत्मनाम, क्योंकि अभिजित जो आत्मा है उस व्यक्ति को क्या है, असता माने दुष्ट है वो व्यक्ति। देख लीजिए हमारे अंदर जो दुष्टता आती है ना, वो दुष्टता इंद्रिय और मन के कारण आती है। और जब हम अपनी इंद्रियों को जीत लेते हैं, क्योंकि हमारे जो शत्रु होते हैं ना, वो हमारा बुरा करते हैं कि भला करते हैं। भगवान शंकराचार्य की पुस्तक है प्रश्नोत्तरी, उसमें लिखा है के शत्रवा संति, शत्रु कौन है, तो बोले निज इंद्रियाणी, विजितानि यानि तानि मित्राणी, जिसने इंद्रिय और मन को जीत लिया उसके इंद्रिय और मन उसके मित्र हो गए, और जिसके इंद्रिय और मन जिसके मित्र हो गए उसको कभी अपने जीवन में किसी दूसरे मित्र की अपेक्षा नहीं है। अब आगे की चर्चा कल।